पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पढ़ावे हैं, गुजबीरज का मर्म न जाना भद्दर भेख बनावे हैं, करुआ और कॉपी न लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुद जा कुत्ती घट में दूती फिर ग्रह द्वार आवे हैं। अब घर छोड़ दिया भगवान पाने के लिए, उनके घर त्याग कर जंगल में जा बैठा और फिर लगी भूख कड़ाके की, फिर चला नगरी में दिए माई दिए माई है? तो परमात्मा कह फिर घर क्यों छोड़ा, वो घर पर अपनी बनाई रोटी मिल रही थी, अपना खा और भजन करे, पेट के लिए धंधा भी करता और अपना मालिक का नाम लेता। अब क्या बताते हैं, करुआ और कॉपी न लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं। करुआ बोलना एक हाथ में लोटा ले लिया और एक तन पे एक लंगोट, बस बनखंड गुफा बनावे हैं, गुफा में जाकर रहने लगे। गुफा भी तो क्यों वो किसी लिए बनाई होगी, वह गर्मी सर्दी ना लागे उसमें जा पड़ा। फिर कहते हैं खुदा कुत्ती घट में दूती फिर गृह द्वार आवे हैं, वह भूख लगी जो फिर गृहस्थी के वरना गात फैलाया के। फिर घर किस लिए छोड़ा था, परमेश्वर आए थे कबीर जी, उन्होंने हमें एक ट्रायल करके दिखाई थी, एक रिहर्सल करी थी, बताई थी, एक एग्जाम्पल कोड किया था कि न्यू रहा करो, अपना काम भी करे और गणे धन की जरूरत को ना, और जब तेरा आठ लागेगी मान ले तू सच्ची दिल से भक्ति दरदान धर्म कर रहे, हर कभी कोई किसी प्रकार का भी आपके ऊपर संसारिक व्यवहारिक कोई दबाव आवेगा खर्चे का, तो ऐसे उस को भी दूर करूंगा मैं जैसे परमात्मा रिहर्सल करके दिखाई थी। परमात्मा कबीर जी के अपना कोई बच्चे नहीं थे, ना पत्नी थी ना माँ बाप थे, लेकिन एक रिहर्सल करने के लिए और हमें उदाहरण देने के लिए दो मुंह बोले मात पिता नीरू और नीमा, और दो मुंह बोले बेटा बेटी जो मुर्दे जिंदे किए थे, बालक लड़का और लड़की 12-13 साल के थे, तो उनको अपने साथ रखा, एक परिवार सा दिखाया, खुद कपड़ा बुनते थे, उससे जो इनकम होती थी उसको खुद भी प्रयोग करते थे और भंडारा साथ में धर्म भी करते रहते थे। और जब इन नकली लोगों ने परमात्मा की बेइज्जती करनी चाही, झूठी चिट्ठियां लिख दी, 18 लाख व्यक्ति आगे कबीर जी भंडारा करेंगे झूठा लिख दिया, तो परमेश्वर ने उन 18 के 18 लाख को 3 दिन तक भोजन करा दिया, अरबों खरबों रुपये खर्च हुए। तो परमात्मा कहते हैं अगर तुम ऐसे रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहूंगा। तो घर त्याग कर जाने की बजाय परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि तुम अपने घर में रहो, अपना दैनिक कर्म करो, लेकिन भगवान की भक्ति ऐसे करो जैसे मैं बता रहा हूं, फिर तुम्हें मोक्ष होगा। खाकी और निर्वाणी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रण सिंगे तुरही तुत्कारा फिर गागड़ भांग गुटावे हैं। बता अब ये भांग क्यों पीण लागे जंगल में जाने वाले, बाहर जो घर त्याग जाते हैं, क्यों पहले तो निकले बेचारे परमात्मा पाने के लिए श्रद्धालु, आगे वो नाड़ी संत टकरा गए, जो भी जिसका जैसा फिट हो गया उसने उसी रंग में रंग दिया, फिर वो भांग इसलिए पिलाते हैं कि कहीं इनके बालक याद ना जाए, भाग जाए यहां से, उन्हें चेले चाहिए, पी के भांग पड़े ना सारे रात दिन, और अपना मनुष्य उनको व्यर्थ कर जाते हैं। काशी गया प्रयाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से वहां द्वारका दाग दगावे हैं, यो भी बैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। काशी गया प्रयाग महोदधि और जगन्नाथ को जावे हैं, और लोहागर और पुष्कर पर से द्वारा दाग दगावे हैं, कहते ये भी व्यर्थ है। अपुण्य आत्माओं, परमात्मा की महिमा से अपरिचित होने के कारण यदि हमें पहले अगर कोई ये बात कहता, हमें ये ज्ञान ना होता कि जगन्नाथ में, काशी में, प्रयाग में, महोदधि में, लोहागर, पुष्कर आदि राणा व्यर्थ है, तो हमारी त्योड़ी चढ़ जाती, हम नाराज हो जाते। अरीब हमारे गीसा गल है, सच बताए रखिए, कति वो तो व्यर्थ की पूजाएं थी, डले डोआ थे, जीवन खोआ थे अपने, बर्बाद कर रहे थे। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीश नहीं दल करुणा वो जग में साध कवावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। बैदा क्यों जाने, हमने सतगुरु बेटे नो जाने। अब यहां क्या लिखा है कि एक समय, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात जो इन्हीं की साधना, इन्हीं से मिलने वाली राहत के ऊपर दृढ़ हो चुके हैं और किसी की बात सुनने तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दुष्ट कर्म करने वाले, दूषित कर्म, निकम्मे कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि वो मेरी भक्ति भी ना करते। अब यहां इसको उनको चार जो है ना, इकट्ठी चार गाली दी है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दुष्ट कर्म करने वाले मूर्ख। पुण्यात्मा, एक बार कुंभ का मेला भरा था और कुंभ पर्व का संयोग हरिद्वार में हर की पैड़ियों पर हुआ। उसमें एक समय निर्धारित होता है, वो सीमित सा समय होता है कि इस दौरान पर भी लगेगी, और उस पर भी के दौरान जो स्नान कर लेगा उसका मोक्ष हो जाएगा, जैसा भी लाभ उन्होंने सोच रखा अपना दंत कथा से। उस आधार पर ये गिरी, पुरी, नागा, कनपाड़े, वैष्णो, ये सभी संत साधु, जिनको हम संत कहते हैं, साधु कहते हैं, ये चले गए वहां नहाने के लिए पर्वी में, कुंभ के मेले पर, और ये वहां इकट्ठे हो जाते हैं, गिरी गिरी वाले ग्रुप में, पुरी पुरी वाले ग्रुप में, सन्यासी सन्यासी वाले ग्रुप में, नागा नागे वाले ग्रुप में, और वैष्णो अपने वैष्णो के ग्रुप में वह इकट्ठे हो जाते। जब आता स्नान करने का समय, तो इनका हेड तो आगे आगे होता है, बाकी उनके पीछे पीछे स्नानार चल पड़ते। उस समय, ये बहुत पुराने समय की बात है, तो उस समय सबसे पहले नागा, जो कति नंगे रहते हैं, वो चले गए, उनका ग्रुप चला गया स्नान करने के लिए, सबसे पहले वो अर्की पैड़ी पे वो पहुंच गए। उधर पीछे से वैष्णो साधुओं का ग्रुप आ गया। अब वैष्णो ने देखा कि नागा पहले स्नान करने वाले हैं, उन्होंने आवाज लगाई कि नागाओ, हम पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आ जाओ। नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम नी वस्त्र हैं, हम कोई इच्छा भी नहीं रखते हैं, हम कपड़ा भी नहीं रखते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। तो वैष्णो साधु कहने लगे, तुम नंगे रहते हो पशु की तरह, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिरो बार मरो। अब नागा इतनी टार कड़े उठे थी उन पर, अब बताया ना, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, और पांचों नार पच्चीसों लड़के धुंधो धार मचावे हैं, इवो काम क्रोध, वो क्रोध रूपी राक्षस वो अंदर ही था, उसने बजादी विसल, वो 500 अड़ंगे भीतर भरे पड़े तुम्हारे, वो तुमने कैसे मोक्ष होने देंगे? अब क्या करवा दिया, उल्टा मुंह कर लिया नानकी बजाए और लठम लठा। वैष्णो साधु और वो नागा, और फिर तो वो विघ्न हो गया वहां पर। कहते हैं 25,000 लगभग 25,000 व्यक्ति वो संत वहां थे, नागा और वैष्णो आपस में कतलेआम कर दिया वहां पर। नाना नूना और भगवान तो गया बाढ़ में। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जान्या वहां जा तेग चलावे हैं। भगवान की पैड़ी को परमात्मा का प्यार भी भूल गए हैं। और काटे शीश नहीं दल करुणा वो जग में साध कमावे हैं, काटे शीश दया भी कोई ना, अरे वो संत कमावे हैं, वो साधु कहलाते हैं। और जो नर जाके दर्शन जाही उनको भी नरक पठावे हैं। ऐसे व्यक्तियों को संत मानकर साधु मानकर, और जो भोली आत्मा इनके पास जाते हैं, इनसे उपदेश लेते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, उनकी भी यही दशा करते हैं, उनको भी नरक भेजते हैं। कक्कड़ भांग तमाखू पीवे बकरे काट तड़ावे हैं, बकरे काट कर उनकी छोंक लावे हैं। और सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादेव जावे हैं। कमाल कर दिया। आपने देखा होगा ये कावड़ लियानी है, कावड़ लेने जाते हैं हरिद्वार ते, खासकर सावन के महीने में। और वहां से मेरे ख्याल में वो 2 किलो गंगा जल लेकर चले, गंगा का पानी जल, नंगे पैरां बेचारे पैदल आओगे, कोई बस में बैठ के, ज्यादातर पैदल ज्यादा आते हैं। और वो भगवान शंकर के पुजारी बनकर जाते हैं। भगवान शंकर का जो नाम हम आपको देते हैं उससे लाभ देता है, भगवान वैसे नहीं देता। अब देखो प्रत्येक इष्ट का अपना अपना एक गुप्त मंत्र है जिससे वो आकर्षित होते हैं, एक कोड वर्ड होता है। जैसे कुत्ते ने कुत्ता कुत्ता करें जाकत ही नहीं देखा है, और उसको नहीं करते तो तुरंत देखता है। ऐसे ही प्रत्येक पशु के अलग अलग कोड वर्ड होते हैं, तो ऐसे ही इन भगवानों के भी ये कोड वर्ड हैं, जो विशेष मंत्र हैं जिनसे ये तुरंत आकर्षित होते हैं। वो मंत्र यथार्थ मंत्र है जो हम आपको देते हैं। तो वो क्या करते आते हैं, वहां से लेकर सावन के महीने में, इस सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सावन के महीने में तो सैर को भी नहीं जाना चाहिए सुबह सुबह किसी टाइम भी, यानी जितना हो सके कम से कम सफर करे सावन के महीने में, क्योंकि सावन के महीने में इतने जीव जंतु सूक्ष्म उत्पन्न हो जाते हैं, कदम रखते ही कई कई मरते हैं। और उस सावन के महीने में यू कार ने नया काम शुरू करवा दिया कि वहां से पैदल चलो गंगा से, हरिद्वार से, और अपने अपने घर तक आओ। तो उसमें कितने जीवन के पैरां तले मरे वो सारे उनके बैड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं पाप में। और पाया गंगा जल लेकर आम वो बता, भगवान शिव जी का उस गंगा जल का भूखा है। और नाम लेते नहीं भगवान का, बम बम महादेव भी ना कहते, बम 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 अब उन कोई नौके नहीं है, बम बम का नाम भी बुंडा। और वो मानने इसने मंत्र तत्काल में हमारे को सारे ये उल्टे पाठ पढ़वा रखे हैं। और एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले चल आगे ने, और बेबेर ने कहेंगे ये बोली चल आगे। इन्हें नो नहीं बेरा तुम के संज्ञा दे रहे हो निकम्यो, आप बोला बन रहे बेबेर बोली बना रहा। तो इसे हम कति ऐसे हो गए भक्ति में, कति माइनस जीरो में पहुंच गए। अब इस माइनस जीरो से ऊपर उठाने के लिए इस दास को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन ये सफल होगा। ये यथार्थ ज्ञान है और इसी से जीव का कल्याण हो सकता है। कक्कड़ भांग तमाखू पीवे बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादेव ध्यावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाने। ये दस नामी दया नहीं जाने, गेरू कपड़ रंगा हुए हैं और पार ब्रह्म से परचे नाही, शिव करता ठहरा हुए हैं। कहते हैं ये दस नामी लाल कपड़े पहन के संत बने फिरे हैं और ये पार ब्रह्म से तो परिचित नहीं सतपुरुष से, और शिव को भगवान बतावे हैं। यही है सबका सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालजय। और ये खुद कहते हैं देवी भागवत के तीसरे स्कंद में कि हम तो नाशवान हैं, हमारा जन्म मृत्यु होता है। चार संप्रदा बावन द्वारे बैरागी अब आवे हैं, कूड़े बेख काल का बाणा संतों देख रिसावे हैं। ये चार संप्रदा बावन द्वारे बैरागी कहते ये कूड़े बेख काल का बाणा, ये झूठी साधना करने वाले काल के पुजारी हैं ये, और संतों देख रिसावे हैं। संतों के बारे में जिक्र चल जाए तो दूना दुख मानने हैं, रखो के ले रहे नाराय। परमात्मा कहते हैं ठारह अक्षौणी अक्षय करी चुनकर शिशवर एक, ये दे धारे जोरा फिर वही सभी काल के बेख। ओ तेरा हे परमात्मा कितना निर्मल ज्ञान दिया है। कहते एक चुनक नाम के ऋषि थे, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 17 और 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है 15 तक तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की उपासना के बारे में बता दी कि वही साधना करते वही से आदमी है, और फिर कहे कि मेरी भक्ति ब्रह्म साधना भी चार प्रकार के करते, अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, उनमें से वो तीन रिजेक्टेड है। ये ज्ञानी जो है ये अच्छी आत्मा है, इनको पता लग गया मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जीवन पाके जो सत्साधना नहीं की तो व्यर्थ है, और केवल एक अन्य उपासना नहीं करनी किसी देवी देवता या व्रत तीर्थ की, केवल एक भगवान की भक्ति करनी है पूर्ण परमात्मा की, उससे पूर्ण मोक्ष होगा। तो उनको ये पता लग गया, दृढ़ विश्वास हुआ कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए ही मिला है, तो उनको ये तो ज्ञान हो गया। फिर वेदों से स्वयं ही निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम का जाप और हठ योग ये ही इसका साधन है, जबकि ये ब्रह्म तक काल तक की पूजा थी। तो एक चुनक नाम के ऋषि ने हजारों वर्षों तक ओम नाम का जाप और हठ योग तप किया, भगवान मिला नहीं, सिद्धियां आ गई। एक मानदाता राजा था, उसके साथ अटपट कर ली, युद्ध कर लिया, और मानदाता चक्रवर्ती राजा के पास 72 करोड़ सेना थी, पूरी पृथ्वी पर अपने संदेश वाहक भेजकर यह जानकारी प्राप्त की थी कि भी कोई मेरी पराधीनता से कोई अलग तो होना नहीं चाहता, यदि कोई मेरी अधीनता नहीं स्वीकार करता उसने युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा संदेश लेकर सब जगह घुड़सवार जा रहे थे, आए वापस चुनक ऋषि ने पूछा भी कहां गए थे, कौन हो तुम, कहां से आए हो। इस एक घोड़ा था वो खाली था बगैर सवारी के, उसके गले में कुछ लिखा हुआ था। तो ऋषि ने पूछा भी ये घोड़ा खाली क्यों छोड़ रखा है, इस पर कोई बैठा क्यों नहीं। तो राजा के सैनिकों ने सारी कहानी बताई कि मानधाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता, इसके गले में ऐसे लिखा हुआ है। हम पूरी पृथ्वी पर घूमे आए, किसी ने भी राजा के साथ युद्ध करना नहीं चाहा, सभी उनसे डरते हैं। चुनक ऋषि ने पूछा कि क्या किसी ने भी उनका युद्ध नहीं उठा। नहीं, कौन उठे, पता है हमारे राजा के पास 72 करोड़ सेना है, जाड़ फोड़ देंगे। अब ऋषि ने सोची भाई अभिमान हो गया, ये काल प्रेरणा है, ये राजा को सबक सिखाना चाहिए। चुनक ऋषि बोला भाई मन ने तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया, और वह सैनिक बोले रे कंगाल तेरा दाने खान देनी, अरे तो युद्ध करेगा चक्रवर्ती राजा के साथ, तेरी क्यों सात बोल दे रही है, अपना कर ले भक्ति बोल वाला। चुनक ऋषि कहने लगा भाई मेरे भाग में नहीं लिख रखी होगी, मैंने तो कह दो और बांध दे घोड़े निया मेरे साथ, क्यों घोड़ा जो पकड़ दे उसने उस एक ये था जिसने वो घोड़ा पकड़ना पड़ता था। तेरे से बोला मैंने पकड़ लिया तेरे राजा का घोड़ा था, कह दे तेरे राजा ने। उन्होंने जाकर राजा को बता दी, राजा ने सोची आज एक आदमी ने बकवाद करी है, कल का दूसरा करेगा, सिर उठावेंगे। एक राजनीति होती है चाणक्य नीति, तो राजा ने एक आदमी को मारने के लिए 72 करोड़ सेना के 4 टुकड़े बनाए, एक टुकड़ी भेज दी 18 करोड़ 18 अक्षौणी। और उधर से उस ऋषि ने अपने जीवन में दो डले डोए थे, उनकी 4 एटम बम बना दिए, सिद्धियां पुतली बना दी। एक पुतली छोड़ दी उसने 18 करोड़ सेना को, उन्होंने कतलेआम कर दिया सेकंडों में, मार दी। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेजी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी वो एटम बम। कहने का भाव ये है 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया उस ऋषि ने, इस काल के पुजारी ने। 72 अक्षौणी अक्षय करी वो चुनक ऋषि सुवर एक, ये दे धारे जोरा फिर भाई सभी काल के बेखे। किसान निर्णय दिया गरीबदास साहब जी ने, परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान को कैसे निर्णायक तरीके से बताया है कि ये काल की साधना करने वाले ये नाना प्रकार के ग्रुप भेख, ये सभी काल के भेख हैं। और दे धारे मौत फिर है, जोरा माने मौत, दिख है ऋषि और भर रखो बदे, दे धारे मौत फिर है, ये सभी काल के भेख है। अपना आत्मा इसी प्रकार दुर्वासा जी के साथ श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युमन और कुछ एक यादों ने आके मजाक कर दिया था, एक लड़के का लड़की का गर्भ का समांग कर लिया है, कढ़ाया बांध के ऊपर का गुदड़े बांध के, और मजाक कर दिया दुर्वासा के साथ के भी न्यू कहें दुर्वासा बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, सारी बता देगा इसके पेट में के है। न पूछा जाके कि महाराज जी इनका गणे दिन में ताल सूत दया करी है परमात्मा ने, साजी के 10-15 साल पाछे इनको गर्भ रहा, ये उतावले हो रहे हैं, ये पूछना चाहते हैं आपसे गर्भ में बेटा है क्या बेटी। दुर्वासा ने देखा ये तो बकवाद कर रहे हैं अपना ध्यान से, तो न बोले इस तक के उत्पन्न होगा। दुर्वासा ने शराब दे दिया कि या दो कुल का नाश होगा इस तक, बाजड़ मारूंगा लठ। अब वो भागे उससे, उस श्राप दे दिया उस कढ़ाई से, उसको श्री कृष्ण के बताए अनुसार उस कढ़ाई को लोहे की कढ़ाई को चूरा करके जमुना में भी डाल दिया, उसके पठेरा उग गया, घास उग गया सरकंडे से, अंत में यादव उसी सरकंडों से कटके आपस में मर गए, तलवार का काम करने लग गया। तो गरीबदास जी कहते हैं कबीर परमेश्वर के ज्ञान को गरीबदास जी बता रहे, दुर्वासा को पेता कोपे माने कुपित हुए क्रोधित हुए, दुर्वासा को पेतहा समझने आई नीचे, 56 करोड़ यादव कटे वह मची रुधिर की कीच। रुधिर माने खून की कीचड़ माच गया, 56 करोड़ यादव ऋषि दुर्वासा के श्राप देने से आपस में लड़के कतलेआम कर डाला। कहते हैं दुर्वासा को पेतहा समझने आई नीच, एक बालका ने मजाक किया था अरे इतना जुलम कर दिया ऐसा श्राप दिया करे। कहते हैं दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के भेख, और इन मैं ऋषि कहे थे बोलो सतगुरु दे। परम पिता परमात्मा सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी की असीम कृपा से अपने को ये सत्संग प्राप्त हुआ। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरिनाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। उदय अस्त का राज जीव को जय कोई देवे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम से ने। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमेश्वर प्राप्ति है, पूर्ण मोक्ष कराना ही इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। लेकिन हम आध्यात्मिक ज्ञान से तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण हमने इस मनुष्य जीवन के कर्म को, मनुष्य जीवन का उद्देश्य और ये क्रियाएं उन पशुओं जैसी ही मान रखी थी जो पशु पक्षी सभी करते हैं। बच्चों की उत्पत्ति, उनके अंदर ममता और मोह, उनकी परवरिश कर देना, ये अन्य प्राणियों के अंदर भी जो की तो विद्यमान है। और इतना ही कार्य हम कर रहे थे तो मनुष्य जीवन की आवश्यकता क्या है। तो अब परमात्मा के तत्व ज्ञान की रोशनी में अब हमें दिखाई देने लगा कि इस मनुष्य जीवन का एक विशेष कार्य और है जिसको हमने प्रारंभ भी नहीं किया था। और यदि हम प्रयत्न कर भी रहे थे परमात्मा की साधना का, वो शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे, उससे हम काल के जाल से मुक्त नहीं हो सकते थे। ये दुर्गति, ये संकट, ये आपदाएं हमारी कभी समाप्त नहीं होती। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं ही आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को अपना ज्ञान दिया। उन पुण्यात्माओं ने अपनी अनुभव की वाणी और परमात्मा को आंखों देखा और परमेश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान को लिपिबद्ध करवा दिया। उन्होंने, उन पुण्यात्माओं ने, उन श्रेष्ठ आत्माओं ने अपनी अमृतवाणी रूपी एफिडेविट लिख दिए कि हमने प्रभु को देखा, हमने परमेश्वर को देखा और वो परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, हमने वो कैसे मिले और उस परमेश्वर ने हमें क्या ज्ञान दिया, वो सब कुछ अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध करवा दिया जो आज हमारे काम आ गया। उन संतों ने, जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उनके अनुभव की वाणी और परमेश्वर द्वारा दी गई अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी और वेद और गीता जी, ये सभी एक ही समांतर ज्ञान देते हैं। लेकिन वेदों और गीता में जहां वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान भी सूक्ष्म वेद के अंदर है। जैसे एक मैट्रिक दसवीं तक का सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, और बीए और एमए का पाठ्यक्रम अन्य रह जाता है, लेकिन बीए और एमए के अंदर मैट्रिक तक के सिलेबस का भी मिश्रण होता है। तो इसी प्रकार वो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं आकर के सूक्ष्म वेद दिया। ये चारों वेद पहले विद्यमान थे, तो सूक्ष्म वेद के अंदर चारों वेदों का भी निष्कर्ष, गीता जी का भी निष्कर्ष, पुराणों का भी निष्कर्ष और साथ में सूक्ष्म वेद तो वो है ही है। आगे की विस्तार से जानकारी उस परमात्मा ने हमें दी। परमात्मा बार बार आकर हमें याद दिलाते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तन बरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कोटि जन्म तोए भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सोकर खर बया बौरे, तू कौआ हंस बुगारे, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तू राजा किन्या, मिटी न मन की आसा, कोटि जन्म तू राजा किन्या, मिटी न मन की आसा, भिक्षुक होकर दर दर घूमया, ये मिला न निर्गुण रसा, मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधूर तनागर इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण ध्रुमराया विष्णु नाथ के पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया मन तू चल रे सुख के सागर जा शब्द सिंधूर रत्नागर असंख जन्म तूने मरते होगे जीवित क्यों ना मरे रे असंख जन्म तो है मरत्या होगे जीवित क्यों न मरे रे द्वादश मध्य महल मठ बोरे बहुर न दे धर रे मन तू चल रे सुके सागर जा शब्द सिंधू रत्नागर मन तू चल रे सुके सागर जा शब्द सिंधू रत्नागर दोजक भीष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया दोजक भीष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया तीन लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया मन तू चल रे सुख के सागर जा शब्द सिंधू रत्नागर भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समान सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समान चल अनसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान मन तू चल रे सुके सागर जा शब्द सिंधू रत्नागर मन तू चल रे सुके सागर जा शब्द सिंधू रत्नागर चार मुक्ति जा चंपी करती माया हो रही दासी चार मुक्ति जहां चंपी करती माया हो रही दासी दास गरीब अब है पद पर से वो मिले राम अविनाशी मन तू चल रे सुके सागर जा शब्द सिंधू रत्नागर परमेश्वर कबीर जी ने अपने उस अध्यात्म ज्ञान को तत्व ज्ञान को अपनी प्यारी आत्माओं को दिया उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा के अंदर प्रकट हुए थे उनको परमात्मा आकर मिले थे कबीर जी सतलोक से चलकर आए थे अब संत गरीबदास जी परमेश्वर के ज्ञान से परिचित होने के उपरांत सतलोक को सचखंड को आंखों देख करके उसके बाद फिर ये अपनी अमृतवाणी में ये विचार व्यक्त किए अब सुख का सागर किसे कहते हैं जहां दुख ना हो सागर में समुद्र समुद्र के अंदर जाने के उपरांत 100-150 किलोमीटर जब प्राणी चला जाता है किसी जहाज आदि में बैठकर उसके बाद समुद्र के अंदर या तो वो जहाज दिखाई देता है या केवल जल ही जल होता है जहां देखे वहां जल ही जल जल ही जल और कुछ नहीं इसी प्रकार सुख सागर सतलोक वो सुख सागर है जहां दुख नाम की चीज कहीं दिखाई नहीं देती यानी सुख ही सुख है और यहां 21 ब्रह्मांड के अंदर यहां सुख नाम की चीज नहीं दुख ही दुख है तो हम कितने गलत स्थान पर आकर सेट हो गए हम अपने आप यहां सेटिंग करने की सोच रहे हैं कैसे सोच रहे हैं कि यहां मकान बनाऊं बढ़िया 2-3 मंजिल का फिर मेरे पोते रहेंगे पर पोते रहेंगे फिर मेरी पीढ़ी यहां रहेंगी परमात्मा याद दिलाते हैं आग गए ना बावड़े ये रहते भी सब जा बिन साहिब की बंदगी कई ठोर ठिकाना न। पहले वाले थे वो भी चले गए, वो दोबारा आकर हमें नहीं बता सके कि हम कहां गए, कैसे दुख पाया हमने। और जो शेष हैं ये भी चले जाएंगे, और बिन उस परमेश्वर कबीर देव जी की भक्ति के, सत भक्ति के, सतलोक वाली साधना के बिना कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे आप जी ने उस दिन के सत्संग में सुना कि ब्रह्मा विष्णु नारद और व्यास जी और सतियों के ब्राह्मण यानी ऋषि महर्षि, उन किसी को भी अध्यात्म ज्ञान नहीं था, ना उनको वेदों का ज्ञान था। तो उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से उन्होंने जो लोकवेद ग्रहण किया हुआ था वही हमें दे रखा था। और यदि वेदों अनुसार भी साधना करते हैं तो ओम नाम का जाप है, उससे ब्रह्म लोक की प्राप्ति है। ब्रह्म लोक जाने के बाद भी गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी पुनरावृत्ति में है। ब्रह्म लोक तक गए हुए साधक भी जन्म मृत्यु के अंदर ही है। पुण्यात्माओं, तो ब्रह्मा जी की भी मृत्यु है, विष्णु जी की भी मृत्यु है, शिव जी की भी मृत्यु है। अब ये प्रसंग ऐसा है कि प्रथम बार, क्योंकि अभी इसका प्रकाश सत्ज्ञान का हुआ नहीं है और ये सीडी वगैरह बनाई जा रही है, आने वाले समय में प्रभु की दया होगी तो ये इस टीवी चैनलों पर भी चलेगा। तो प्रथम बार जब कोई ये सुनता है इस दास के मुख से कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, तो ये बात गले उतरती नहीं, क्योंकि हमने लोक वेद सुन रखा था। लोक वेद के आधार से हमने सुन रखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये स्वयंभू हैं और यही पूरी सृष्टि के रचनहार हैं, यही सतीथी करते हैं, यही सहार करते हैं, इनके ऊपर कोई शक्ति नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं। जबकि इनकी जीवनी में लिखा है कि ये तो नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। इसके लिए थोड़े से प्रमाण दिखाने पड़ेंगे। पुण्यात्माओं, एक अंधा अंधेरे में रात के समय लालटेन जगा के चल रहा था, हाथ में लालटेन लिए हुए और सफर में जा रहा था। आगे से कुछ बच्चे आ रहे थे, बच्चों का शोर सुनकर उस ब्लाइंड मैन ने कहा कि बच्चों जरा ध्यान से चलना, देखकर चलना, मैं अंधा हूं, ध्यान से चलना, मैं अंधा हूं। अब उन बच्चों ने सुना कि भाई ये कोई आदमी कुछ बोल रहा है, जब उन्होंने सुना कि अंधा है और लालटेन ले रहा, अंधा कहे और लालटेन लिए आ रहा है, ये क्या चक्कर है? उन बच्चों ने आकर पूछा, बाबा क्या आप सचमुच अंधे हो? हाँ बेटा मैं अंधा हूं। फिर तो आप जी ने, बच्चों ने कहा, आप जी ने लालटेन क्यों ले रखी है? आप आंखों वालों के लिए कहीं मुझ अंधे में टक्कर मार दो, अंधेरे में मेरी टूट जा दे, इस लालटेन की रोशनी में मेरे से टल जाओ, तुम साइड पकड़ जाओ, अपनी सुरक्षा के लिए ले रखा बच्चा मैंने। तो पुण्यात्माओं, ये पवित्र पुराण, पवित्र वेद, पवित्र गीता जी, इनकी इस दास को आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इस दास को वो सूक्ष्म वेद प्राप्त हो गया था जिसमें इनका सबका समावेश है और निष्कर्ष ज्ञान है, वो कबीर वाणी में, कबीर साहेब की वाणी में, परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में मुझे प्राप्त हो गई थी। और उस वाणी का प्राप्त होना भी सुफिशियंट नहीं था, परमेश्वर ने स्वयं ही उस दास को अपना भेद बताया, उस वाणी को समझाया। तो ये जो वेद और पुराण और गीता जी, ये मेरे लिए लालटेन है, उन आंखों वालों के लिए कहीं वो मेरे से ना खस बैठे, मेरे साथ झगड़ा ना ठान ले, इन सदग्रंथों की रोशनी में इन आख्या देखकर वो साइड पकड़ जाएंगे वे सच्ची कहे रामपाल झूठ नहीं बोल रहा। और जब तक ये लालटन ना दिखाऊंगा जो कहेंगे तो झूठ बोला है, निंदा करता है ब्रह्मा विष्णु में, इसके बारे में उठ पटांग कहता है। और ये लालटन दिखा दूंगा तो देखकर संतुष्ट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं या फिर शरण में आ जाते हैं, वो फिर बाधक नहीं बनते हैं। तो इस बाधा को हटाने का ये एकमात्र ही रास्ता है कि रह रह कर ये ज्ञान सुनाना पड़ता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होगी और ब्रह्म की भी मृत्यु होगी जो इनका पिता है, दुर्गा की भी मृत्यु होगी जो इनकी माता है। तो ऐसे हम कहते हैं अग गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। ये दिखाने के लिए लालटन दिखानी पड़ेगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है और इनकी माता भी है, इनके पिता भी हैं। ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत, ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहां से प्रकाशक प्रकाशित है, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ को आपके रूबरू करते हैं और कहते हैं समझदार को संकेत ही बहुत होता है। ये तीसरा स्कंद, पृष्ठ। विष्णु भगवान अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहा है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आप तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है, उन्हें तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। यदि ये दास ये कहकर के आगे कदम बढ़ा लेता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है और ये लालटन नहीं दिखाता है तो कहीं भी ये सीडी हम क्योंकि बहुत सस्ते रेट में लागत से भी कम रेट में दे रहे हैं तो हमारे भक्त किसी को दिखावेंगे तो वो देखे को नहीं आगे, फिर सदग्रंथों को इनकी जीवनी को आंखों पढ़कर फिर वो विवश हो जाता है इस बात पर विचार करने के लिए कि यह तो सच्ची बात है और सच्ची है बुद्धिमान तो फिर मानने भी गा, और इनको आंखों देखकर भी विरोध करता है तो वो अच्छी आत्मा नहीं है। जान बूझ साची तजय करे झूठ तेने और ताकि संगत है प्रभु, फिर सौपन में भी ना दे, जो जान बूझ कर बकवाद करे आंखें देखकर भी नहीं माने विरोध करता है तो वो दुष्ट इंसान होता है। और परमात्मा खुद कहते हैं कि इसे निकम्मे की तो सपने में भी फिर मिलन ना हो, वो ना मानो तो मानो। अब जिनके वो फंस चुके हैं, जिन चतुर प्राणियों के वो फंसे पड़े हैं यानी जिनसे किसी ने 20 वर्ष किसी ने 30 वर्ष नाम लिए होंगे तो अब वो ये सोचते हैं कि महाराज क्या होगा, या कुछ ऐसे टाइप के लोग हैं जो औरों को वर्मित करके खुद छोटी मोटी कोई पोस्ट उस पंथ में प्राप्त किए हुए हैं, वो अपना भला भी नहीं सोचते औरों का, तो वो सोचेंगे कैसे। तो वो चातुर प्राणी बताए हैं जो आंखों देखकर भी नहीं मानते, वो मूड बताए हैं। और जो संत हैं जो बोली आत्माओं को फंसाए बैठे हैं, वो चतुर इंसान बताए हैं। परमेश्वर कहते हैं अपनी वाणी में कि चातुर प्राणी चोर है, क्योंकि वो सच नहीं बता पा रहा, और मूड मुगद है ठोठ, फिर संतों के निकाम के उनके देगड़ जोठ। कि जो जानबूझकर भी सच्चाई को स्वीकार नहीं करता, उन चतुर प्राणियों पर ही आश्रित है, फिर भी नहीं आता यहां उपदेश लेने नहीं आ रहा, उसके लिए बता कि वो चतुर प्राणी तो चोर है, वो नकली संत मीठी बात बनाकर भ्रमित किए हुए हैं। परमात्मा कहते हैं बीजक की बात आ गए, बीजक नाई आथ, और पृथ्वी डोबण उतर रहे हुए कह कह मीठी बात। चातुर प्राणी चोर है, ये मूड मुगद है ठोठ, और फिर संतों के नहीं काम के उनके देगल जोठ, फिर वो हमारे काम के नहीं है जो आंखों देखकर इस इतिहास को भी फिर भी नहीं मानते हैं। तो मूड मुगद वो तो उन चातुर प्राणियों के साथ ही उनको और सख्ती से बांध दे, अर्थात वो वहीं फंसे रहे पड़े रहे उन्हीं जो गेह में। अब इससे कैसे दो गया श्रीमद देवी भागवत के श्री ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनका जन्म मृत्यु होता है, और ये भी सिद्ध हो गया कि दुर्गा इनकी मां है। अब रह गया पिता की समस्या, अब पिता की समस्या को शिवपुराण करेगा खत्म। अपने आत्माओं, हमने सबसे पहले ये निश्चय करना होगा कि जिस मार्ग पर हम चल पड़े भक्ति वाले रास्ते पर, ये ठीक है कि नहीं। और जिस दिन आपको ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि हम जिस मार्ग पर चल पड़े ये सही है, तो आपका जो भक्ति रूपी सफर है वो निर्बाध हो जाएगा और सफल हो जाओगे। जब तक आप स्वयं ही कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे, आपको संतुष्टि नहीं है कि हम जो कर रहे हैं सत्य है, तो कोई भी डगमग कर देगा। तो इसलिए आप जी को ये ज्ञान कराना अति आवश्यक है। आप बुद्धिमान हो, बालक नहीं हो। आज मानव ने कंप्यूटर बना लिए, ऐसी दूर दूर देखने वाली सूक्ष्मदर्शी बना ली, वायु यान बना लिए, आकाश में सैटेलाइट फिट कर लिए, ये के काम आओगे। अगर दो वर्ष वर्षा ना हुई ना, ये कोई ना पावर ढूंढे सैटेलाइट, ना ये कंप्यूटर, ना ये जहाज, टक्कर मार मार कमरा प्राणी भूखे मर के। दो वर्ष भी वर्षा ना हुई तो घनी तीन वर्ष पकड़ जाएंगे आधे कुछ थोड़े बहुत। तो यहां किसके लिए हम के को बद करण लाएंगे, परमाणु बम बना लिए, अपना नाशकरण की आप तैयारी कर ली। तो हमने सबसे पहले अपने मार्ग को देखना है कि हम ठीक जा रहे हैं या गलत। इसलिए आप जी को ये तैयारी करानी पड़ती है, क्योंकि ये लेक्चर दिए जा रहे हैं, ये सत्संग है, इसको सत्संग कहते हैं। ये दो गाने कोई गाजे बैठकर बज ले रहे, भगवान तेरा काम आऊगा, फिर ढोलक पीटन लग जा, फिर सारंगी बजान लग जा, ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति तो ये ज्ञान समझ के फिर सिमरन करना है डट के दिन रात। कहते हैं नाचे गाए किने ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। और जब नाचे गाए भगवान मिले फिर कौन दो आगण हो। रोने का तात्पर्य ये है कि आपके अंदर एक विशेष कसक पैदा होगी, जैसे परमात्मा की चर्चा चलेगी आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे, तो समझ लिए कि आप की भक्ति बहुत ही स्वस्थ है। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। परमात्मा की प्राप्ति उसके अंदर प्रेम होने से होगी, और प्रेम बनाने के लिए सारी क्रियाएं कराई जा रही हैं, जो ज्ञान बताया जा रहा है। अब किसी वस्तु के अंदर हमारी जो चाह बनती है उसके गुणों से बनती है। जैसे मोटर गाड़ी लेनी है, कार लेनी है, तो उसके गुणों का पता है, तो आदमी उसके लिए कोशिश करता है, धन जोड़ता है, लोन लेता है, कुछ भी करता है, तो उसको लेकर छोड़े पार बस आ जाता है। तो इसी प्रकार हमने इस पूर्ण परमात्मा के गुणों का ज्ञान हो गया और होगा तो तभी हम इसकी चाह करेंगे और फिर इसमें एक विशेष प्रेम पैदा होगा, क्योंकि हम सतलोक में रहा करते हैं अपने पिता के पास और वहां हमें कोई दुख नहीं था। हम अपनी नालायकी थे, यहां काल के फंस गए और अब हमने वहां जाना है जहां से हम अपने पिता के साथ से बिछुड़ कर आए, हमने भारी गलती कर रखी है और घने बिछड़े हुए ने कोई अपना पिता फिर मिल जाए, बालक ने बहुत दौड़ के सीने के लग जाता है, आंखों से आंसू बहते हैं। तो कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन जल के तेज नयारे। आत्म और परमात्मा एक नूर जहूर, बीच में झाई कर्म की ही ताते कहिए दूर। आत्मा और परमात्मा का के बीच में हमारे कर्मों की दीवार बन गई, ये बीच में झाई बन गई, एक बहुत बड़ी बीच के अंदर बाधा बन गया। तो इस बाधा को कैसे हटाया जाए? जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, बादल कैसे हटते हैं? हवा उनको तेज आवाज उनको फेंक देती है इधर उधर और सूर्य स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। आत्म और परमात्मा एक कै नूर जहूर, और बीच में झाई कर्म की ताते कहिए दूर। उसके लिए उस झाई को हटाने के लिए क्या बताते हैं? जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। तो उस परमात्मा में एक प्यार बनेगी, कसक बनेगी। कुछ दिनों के बाद फिर आंखों से आंसू भी बंद हो जाएंगी और ऐसी स्थिति हो जाएगी जिसको उन्मन मुद्रा बोलते हैं। नौका तेरा ऐसा क्या हो गया, तू उन्मन सा बैठा है। उन्मन सा यानी ना बोलता, ना ढंग से हंसता, ना कोई विशेष रुचि किसी वस्तु में। तो उसमें आपको ये समझ ले कि तत्व ज्ञान आपके हृदय में समा चुका है। जैसे नानक साहेब जी से किसी ने पूछा कि हे महात्मा जी, आप कभी प्रसन्न दिखाई नहीं देते, खोए खोए से रहते हो, कभी खुश नजर नहीं आते। तो नानक साहेब जी ने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढड़ जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़कती उनानो केड़ा हासावे। कि यहां किसका ऊपर प्रसन्न हूं, ना जाने काल एक पल में के बिजली गिर दे, के जुलम कर दे, पूरा परिवार नाश कर दे, कि ना जाने कितना उदमस्तार दे, और हमें अपनी मृत्यु स्पष्ट दिखाई देती है, फिर जिन आते सरते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हासा वे। नानक साहब जी से पूछा, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते? तो श्री नानक साहब जी ने कहा, संत जी ने, कि भाई खुश होता हूं जब, जैसे सत्संग में प्रेमी भक्त आते हैं, प्यारी आत्माएं, तो संत यानी गुरु जी खुश होते हैं कि मेरे बच्चे ज्यों के त्यों आगे, इनका कोई कीड़ा ना लग गया, किसी ने इनको भ्रमित नहीं किया, काल ने कोई अटैक करके इनको खोया नहीं हमारे से, ये परमात्मा के बच्चे सुरक्षित हैं। आप जी जाते हो यहां से सत्संग सुनकर तो चिंता बन जाती है कि कहीं कोई काल का दूत इन पुण्य आत्माओं को भ्रमित ना कर दे। तो नानक साहब जी कहते हैं, साध मिले साड़ी साधी होंदी, विछड़ जा दिलगीरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। जब ये भक्त संत मेरे साथ आते हैं वापस, साध मिले साड़ी साधी होंदी, तो ये समागम होता है, ये हमारी खुशी है, और जब ये जाते हैं तो दिल में दिलगिरी हो जाती है, चिंता बन जाती है, हमारी ये डर रहता है कि कहीं मेरी प्यारी आत्माओं को काल के दूत बर्बाद ना कर दे, और जब ये झोंके तो आ जाते हैं तो फिर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तो यहां परमात्मा यही याद दिलाना चाहते हैं कि कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आपके अंदर एक विशेष कसक पैदा होगी, जरा सी भी चर्चा परमात्मा की शुरू हो जाएगी, आंखों से आंसू आने लग जाएंगे, और कुछ दिनों के बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी आंसू भी बंद हो जाएंगे, और वैसे ही जैसे यह संसार असार सा नजर आओगा, किसी चीज में रुचि सी ना रहेगी, वो रोना होता है, वो कसक है न्यारी। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, रो बल घट जावे, आंसू तो भगवान मिले नहीं, रो तो बल घट जा। और आठ पैर का दाजना जैसे घुण काट ने खा, कहते हैं लास्ट सतिथि ऐसी आ जाएगी। कबीर परमेश्वर जी उदाहरण देते हैं, कबीर वैद बुलाइया पकड़ के देखी बा, और वैद न बेदन जान ही मेरा करक कलेजे मां। सच्ची लगन जब भगत की बन जाती है उसकी ऐसी सतिथि हो जाती है, घर वाले जो भक्ति से अपरिचित हैं वो चिंतित हो जाते हैं, इस बच्चे का के हो गया, ना तो गुणासा बोलता, ना हमारे पास बैठता, एकांत में रहस है, खावा पी भी सीए करे है, कोई खास नहीं, ओढ़ने पहरने की रुचि इसने रही नहीं, तो घर वाले न सोचे है कदे बच्चे का कोई गुप्त बीमारी होगी हो,